ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बोर्ड की स्थापना को विशेष रूप से हल्दी किसानों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड हल्दी के उत्पादन में नवाचार, वैश्विक संवर्धन और मूल्यवर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी का उत्पादन करते हैं और विश्व की 70% हल्दी भारत में पैदा होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के आवश्यक और औषधीय गुणों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी उपज बढ़ाने पर भी ध्यान देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ढांचे के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कानून और नियमों को विकसित करना है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP नियम 2025 पर सरकारी अधिकारियों और उद्योग की एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और ड्राफ्ट नियम 2025 पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्र में 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए नियमों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के प्रमुख सरकारी अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और स्पेन के विदेश मामलों के मंत्री जोन्स मैनुअल अल्बेरेस ने मैड्रिड में स्पेन भारत काउंसलिंग फाउंडेशन में बदलती दुनिया के लिए रणनीतिक गठबंधन पर एक सत्र में भाग लिया। आज एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने लिखा कि अशांत दुनिया में भारत स्पेन सहयोग महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्रतिभा के प्रशिक्षण और गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भूमध्य सागरीय देशों और लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने में स्पेन एक प्रमुख भागीदार है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सरकारों, व्यवसायों और संस्थानों को इस क्षमता का एहसास करने और संबंधों के अगले चरण की तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने मॉडल टाउन से कुंवर करण सिंह, गांधीनगर से कमल अरोड़ा, मुंडका से धर्मपाल लकड़ा, आरकेपुरम से विशेष टोकस और ओखला से सुश्री अरीबा खान को मैदान में उतारा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए भारत पहुंच गए। कल रात नई दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति थर्मन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें मंत्री, संसद सदस्य और अधिकारी शामिल हैं। सिंगापुर राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति आज राष्ट्रपति थर्मन से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थर्मन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वहीं राष्ट्रपति थर्मन इस महीने की 17 और 18 तारीख को ओडिशा का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति थर्मन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। ये राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत का भी प्रतीक है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने उल्लेखनीय जीत के साथ दूसरे दिन का समापन शानदार ढंग से किया। भारतीय पुरुष टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ब्राजील को 64-34 के स्कोर से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 175-18 से बड़ी मात दी। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में दबदबा बनाते हुए 175-18 के अविश्वसनीय अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।